मेरे प्यारे युवा साथियों नमस्कार फ्रेंड्स, हम लोग फिलहाल उत्तर लेखन पर बातें कर रहे हैं और थोड़े विस्तार के साथ और बहुत ही व्यावहारिक स्तर की बातें कर रहे हैं। इससे ठीक पहले के अपने लेक्चर में मैंने विचार के बारे में आपसे कुछ बातें साझा की थी, थॉट्स, और उसके तहत मैंने फैक्ट्स को भी शामिल किया था, आपको याद होगा। यानी कि जब हम किसी भी टॉपिक को पढ़ें और समझ लें तो समझने के बाद हमें एक काम करना चाहिए कि उस टॉपिक से संबंधित जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, चाहे वे वाक्य के रूप में हों, आंकड़ों के रूप में हों, सन के रूप में हों, तथ्यों के रूप में हों, घटनाओं के रूप में हों, जिन रूपों में भी हों, लेकिन होने चाहिए वो बहुत महत्वपूर्ण पिलर्स की तरह। हर जो टॉपिक होता है, चैप्टर होता है, कुछ पिलर्स पे खड़ा होता है। बीच की तो बनावटें होती हैं लेकिन जो स्तंभ होते हैं वे कुछ ही होते हैं, उन्हें मैं यहां फैक्ट्स कह रहा हूं। वे फैक्ट्स हमें मालूम होने चाहिए, इसके बाद उस घटना के बारे में अपने विचार हमें कुछ न कुछ तो बना ही लेने चाहिए। हम समर्थन करते हैं, हम विरोध करते हैं, या जो भी करते हैं किन आधारों पर करते हैं, केवल सतह पर नहीं कि विरोध करने के लिए हम विरोध कर रहे हैं, यहां हमें थोड़ा सा बचने की कोशिश करनी होगी। देखिए, जब आप सिविल सर्विस की तैयारी करके एग्जामिनेशन हॉल में अपना उत्तर लिख रहे हैं उस समय आप एक व्यक्ति भी हैं और व्यक्ति के रूप में आपके अपने कुछ विचार हैं, कुछ धारणाएं हैं, और ये धारणाएं हमारी बनती हैं अपनी जाति को लेकर के, अपने वर्ग को लेकर के, अपने वातावरण को लेकर के, अपनी परिस्थितियों को लेकर के। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे मस्तिष्क में हमारे लिए एक विचार बना देती हैं किसी भी घटना के प्रति। लेकिन चूंकि अभी आप जब एग्जाम दे रहे हैं तो आप सिविल सर्वेंट बनने के लिए एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके दिमाग में बहुत स्पष्ट बात यह होनी ही चाहिए कि यहां मेरे जो विचार हों मुझसे ऊपर उठकर हों। ऊपर उठकर हों तो फिर क्या हों? सीधी सी बात है कि संविधान, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी के दायरे में आपको अपने विचारों का निर्माण करना चाहिए। आप अपने व्यक्तिगत विचार रखे रहे कोई बात नहीं, लेकिन यहां तो आपको अपने व्यक्तिगत विचारों की तिलांजलि देनी होगी, उनका त्याग करना होगा, और ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि आप एक सिटीजन है, एक देश के नागरिक हैं, और देश के नागरिक होने के नाते जो हमारा सबसे बड़ा जो ग्रंथ है, जो धर्म ग्रंथ कह लीजिए, आप नैतिक ग्रंथ कह लीजिए, आप आचरण ग्रंथ कह लीजिए, वो संविधान ही होता है, हमें स्वीकार करना भी चाहिए। इससे आप अपने विचारों का निर्माण कर लें, क्योंकि यदि आप इसके विपरीत गए तो फिर संभालना आपको मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि संभालने के लिए फिर आपके पास कोई आधार ही नहीं है। आप अपनी बात को जस्टिफाई कर सकें तो उसको जस्टिफाई करने के लिए कुछ आधार तो चाहिए ना, कुछ बेस तो चाहिए। तो क्या बेस लेंगे? ये तो कोई बेस नहीं है कि नहीं मैं यही ठीक समझता हूं, मुझे यही लगता है। ये कोई बेस नहीं है कि आप ठीक समझ रहे हैं, आपको ऐसा ही लगता है, आपको ऐसा ही बताया गया है, किताबों में आपने ऐसा ही पढ़ा है, ये कोई बेस नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रांग बेस, ये चट्टान की तरह है, इसके आधार पर आप अपने विचार निर्मित करें। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा जो स्तंभ है वो है भाषा, जिसे आप एक्सप्रेशन कह सकते हैं, व्यापक रूप में एक्सप्रेशन कहना ज्यादा सही होगा। देखिए, यहां फिर से आप एक टकराव के दौर से गुजरेंगे। वो टकराव क्या है? आपकी अपनी एक भाषा है, आप बोलचाल की भाषा है आपकी, आप जिस परिवेश में रह रहे हैं उसकी भाषा आप जानते हैं, और इस भाषा में जो हमारे परिवेश की भाषा है, जिसे आप मदर टंग कह सकते हैं, अपने स्टेट की भाषा कह सकते हैं, जो भी कहना चाहें, किसी भी सब्जेक्ट को हम व्यक्त कर सकते हैं। यहां तक कि जब आप अर्थशास्त्र की बात करेंगे तो बोलचाल की भाषा में आप अर्थशास्त्र की बात कर सकते हैं। आप देखिए कि गांव वाले आकर के जब अपनी सब्जियां मंडी में बेचते हैं तो अर्थशास्त्र का ही तो उपयोग कर रहे होते हैं, उन्हीं के सिद्धांतों की बात कर रहे होते हैं, उसी विषय पर बात कर रहे होते हैं, लेकिन अपने अंदाज में कर लेते हैं ना, बेच लेते हैं। यहां जो टकराव होना है वो इसमें और उस विषय की भाषा में है। अर्थशास्त्र की वो बात कर रहे हैं लेकिन अर्थशास्त्र की भाषा में बात नहीं कर रहे हैं, वो केवल अपने को कम्युनिकेट कर रहे हैं। आप चूंकि एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, अपने दिमाग से इस बात को मत हटाइए कि आप एक ग्रेजुएट व्यक्ति हैं। आप जो कम पढ़े लिखे हैं, जो गांव के लोग हैं, उनसे भिन्न हैं, और इसीलिए आपको ग्रेजुएट बनाया गया है कि आप थोड़े उनसे भिन्न हो सके, एक सजग सतर्क नागरिक बन सके, और इसीलिए इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन भी यही रखी गई है, ग्रेजुएशन। तो आपसे अपेक्षा भी तो वही की जाएगी, विचारों के स्तर पर भी उसी तरह की अपेक्षाएं की जाएंगी, और स्वाभाविक है कि भाषा के स्तर पर भी उसी तरह की अपेक्षाएं की जाएंगी। तो आपसे जो भाषा के स्तर पर अपेक्षा की जाती है वो दो तरह की होती है। पहली बात यह कि आप जिस भी विषय के बारे में लिख रहे हैं, जिस भी विषय के बारे में आप बातें कर रहे हैं, उस विषय की भाषा का इस्तेमाल करें। महंगाई बढ़ गई है, ये बोलचाल की भाषा है, बहुत महंगाई हो गई है। मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ रही है, ये अर्थशास्त्र की भाषा है। सिंपल सी बात है, बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि आप किसी भी विषय की जब तैयारी करेंगे तो उस विषय में उस विषय से संबंधित शब्दावलियां भी होती हैं, उसकी भाषा उसी तरह की होती है। तो जब आप बहुत ध्यान से तैयारी करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर उस विषय की जो शब्दावलियां हैं वो आपके दिमाग में रचती बसती चली जाएंगी। किसी भी विषय को जब हम बार बार पढ़ रहे होते हैं तो उसका मतलब केवल ये नहीं होता कि हम फैक्ट्स को दोहरा रहे हैं, नहीं, हम इस प्रोसेस में बकायदे उसकी भाषा को भी हृदयंगम कर रहे होते हैं, आत्मसात कर रहे होते हैं। वह भाषा हमारी आदत में समाती चली जाती है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जब आप लिखेंगे तो आप सोच सोच करके नहीं लिखेंगे कि मुझे अर्थशास्त्र की भाषा का इस्तेमाल करना है, मुझे राजनीति शास्त्र की भाषा का इस्तेमाल करना है, ऐसा नहीं होगा। वो तो उतरती चली जाएगी भाषा, और कोई भाषा तभी उतरती चली जाती है जब वो आपके अंदर उस तरीके से समा गई हो, रच बस गई हो। तो याद रखिए कि जब भी आप विषय को पढ़ रहे हो तो उस विषय की जो भाषा है उस पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। रिवीजन करने के दौरान ये ऑटोमेटिक तरीके से होती चली जाती है यह बात, और कुछ आपको अपनी तरफ से कोशिश भी कर लेनी चाहिए। किसी भी विषय की कुछ ही बातें ऐसी होती हैं, किसी भी विषय में कुछ ही शब्द ऐसे होते हैं जो उस विषय को उस विषय की भाषा वाले बना देते हैं। अर्थशास्त्र को अगर आप लेंगे तो उसके मुश्किल से 50-60 शब्द ऐसे होंगे जो शब्दावलियों के रूप में होते हैं। आप राजनीति शास्त्र को ले लीजिए, आप बकायदे इतिहास को ले लीजिए, इतिहास में तो खैर ज्यादा इस तरह की शब्दावलियां नहीं होती, हाँ भूगोल में जरूर इस तरह की शब्दावलियां होती हैं जिस तरह से अर्थशास्त्र में होती हैं। आप भूगोल के कुछ शब्दावलियों की एक लिस्ट बना लीजिए और उन लिस्टों को बार बार आप दोहरा लीजिए तो आप देखिए कि वो शब्द जो है आपके दिमाग में आकर के रच बस जाएंगे, बस आपकी बात बन जाएगी। ये तो शब्दावलियों की बात हुई। अब दूसरी बात है वाक्यों की। शब्दावलियों से ही बात नहीं बनेगी, शब्दावली तो वाक्यों की रचना करते हैं ना, शब्द वाक्यों को बनाते हैं। अब आपके अंदर वाक्य रचना का भी सामर्थ्य होना चाहिए, और आपकी जो वाक्य रचना है वो इस तरीके की होनी चाहिए कि जो आप बात रखना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, वो बहुत स्पष्टता के साथ सामने आ सके। देखिए, जब आप तथ्य और तर्कों का इस्तेमाल करेंगे, आपके विचार बहुत स्पष्ट होंगे, तो ऐसा ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। लेकिन अगर आपने भाषा के स्तर पर गड़बड़ी कर दी तो आपके पास तथ्य हैं, बहुत अच्छे तर्क हैं, आपके पास बहुत स्ट्रांग, बहुत स्पष्ट विचार भी हैं, लेकिन चूंकि भाषा अस्पष्ट है, हिलने डुलने वाली है, तो सीधी सी बात है कि फिर वो जो विचार हैं वो स्पष्ट नहीं हो पाएंगे, गड़बड़ा जाएगा। देखिए, जब आप एथलेटिक्स को देखिए, है ना, जब वो कुछ करतब दिखा रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि उसने लॉन्ग जंप किया, हाई जंप किया, तो इसके बाद जब वो जमीन पर आकर के अपने पैर टिकाते हैं, अलग अलग तरह की इस तरह की कलाकारियां लोग दिखाते हैं ना, तो ये देखा जाता है कि जब जमीन पर उसने अपने पैर टिकाए तो उस समय वो कितना स्ट्रांग था। ऐसा तो नहीं कि वहां लड़खड़ा गया हो, गिरा नहीं लेकिन लड़खड़ा गया हो, पैर उसके डगमगा गए हों, मार्क्स कट जाते हैं। ठीक यही बात यहां भी है। अगर आपके पास भाषा बहुत स्ट्रांग नहीं है, वाक्य विन्यास बहुत अच्छे नहीं है, कौन सा वाक्य कब आना चाहिए, फिर कब आना चाहिए, कैसे पहला वाला जो वाक्य है वो दूसरे वाक्य से जुड़ा हुआ है, जब ऐसा होता है तो भाषा में एक रिदम आ जाती है, एक लय आ जाती है। इसका मतलब यह है कि आपको भाषा पर भी काम करना चाहिए। सामान्यतया स्टूडेंट भाषा पर काम नहीं करते, और आपके लिए आज ये बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। हम लोग अलग से भाषा पर काम नहीं करते थे, उसकी जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि हम लोग पढ़ते बहुत थे। हम लोगों के समय में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं थी, हम लोग टुकड़े टुकड़े में किसी चीज को नहीं देख पाते थे। अगर मान लीजिए कि हमें कोई कोटेशन भी निकालना है किसी विषय पर, तो पता लगा उस विषय को हम पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद उसमें से कोटेशन निकालते थे। तो विस्तार के साथ पढ़ना हमारी मजबूरी ही सही, लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी। आपके लिए ऐसा नहीं है। आप जिस पर भी कोटेशन निकालना चाहें, आप गूगल महोदय की शरण में चले जाइए, वो आपको 10 कोटेशन प्रोवाइड कर देगा, आप उन्हें रट लीजिए। न तो आपको उस कोटेशन का परिवेश मालूम और न ही उसका भाषागत उसका उपयोग मालूम, बस कोटेशन मालूम है। आपका पढ़ना बहुत कम हो गया है, आपका पढ़ना केवल पुस्तकों तक सीमित हो गया है और उसमें भी पॉइंट वाइज पढ़ना सीमित हो गया है। जब आप पॉइंट वाइज पढ़ते हैं तो भाषा में जो रिदम होती है, जो लय होती है, भाषा का जो प्रवाह होता है वो गायब हो जाता है। और मैं देख रहा हूं कि आज के स्टूडेंट्स जब लिखते हैं तो उनमें ये बहुत बड़ी कमजोरी दिखाई देती है। कुछ ऐसे हैं जो वास्तव में पढ़ना पसंद करते हैं, वो लिटरेचर पढ़ते हैं और दूसरी तरह की किताबें पढ़ते हैं, भाषाई दृष्टि से वो बहुत अच्छे होते हैं, प्रभावित करते हैं, अच्छा लगता है, उनकी भाषा में अनजाने में ही एक कविता का एहसास होता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि इस पर भी आपको थोड़ा काम करना चाहिए। देखिए, मान लीजिए कि बिल्कुल वही तथ्य, वही तर्क, वही विचार, वही पॉइंट्स आप लिख रहे हैं और बिल्कुल वही बातें मैं लिख रहा हूं, लेकिन आपकी भाषा बहुत अच्छी है, तो मान करके चलिए कि मेरा जो स्कोर है वो 5 पर रुक जाएगा और आपका स्कोर 6 तक पहुंच जाएगा। भाषा में इतनी बड़ी ताकत होती है, क्योंकि भाषा मन को भी लुभाती है, आकर्षित करती है। तो एग्जामिनर का जो मन था वो आपकी भाषा से आकर्षित हो गई, आपकी भाषा उसको लुभा ले गई, तो उसका इनाम तो वो एग्जामिनर आपको देगा ना, और बकायदे वो फिर उसका इनाम आपको देता है। तो जो मैंने एक्सप्रेशन शब्द का इस्तेमाल किया है उसमें शब्दावली भी है और साथ ही साथ वाक्य भी है। जब मैं शब्दावली की बात कह रहा हूं तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि लेटेस्ट शब्दावलियां भी आप अपने विषय में शामिल करता चले जाएं, क्योंकि देखिए भाषा लगातार विकसित होती चली जाती है। अखबारों से आपको नई शब्दावलियां मिल जाती हैं, जब आप चैनल्स वगैरह सुनते हैं, देखते हैं, तो वहां आपको शब्द मिल जाते हैं। तो अच्छा होगा कि आप इस तरह के शब्दों को नोट कर लें, जब आप पिक्चर देख रहे होते हैं या कहीं को बहुत अच्छा वाक्य आपको पढ़ने को मिल गया तो बेहतर है कि इस तरह के वाक्यों को आप नोट कर लें, तो आपके पास एक अच्छा सा संग्रह तैयार हो जाएगा। फिर आप पाएंगे कि ये आपके लिखने में ऑटोमेटिक तरीके से आते चले जा रहे हैं, बशर्ते कि आप उन्हें बार बार दोहराते रहेंगे तब, अदरवाइज अपने आप नहीं आएंगे। तो इस तरीके से आपका जो एक्सप्रेशन है वो बेहतर होता चला जाएगा। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ये मेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।